रेढ़ौला पुस्तक 16वीं लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो हरिहंतारं, नमो सिद्धां, नमो आयरियां, नमो वज्रायां, नमो लोये सौवसाहूनं, मुनिय परमत्थवित्तर मुनिवर वीरैः सिद्धविज्जैः सन्तु आवयवदी पश्यौ सुयदेवया मज्जं सुसुदेवयाय भक्ति सुदो वजो गोवभावियो सम्मं आवहयिनाण सिद्धिं प्राणफलं चाविधिं वाणं तो सुवदेवय विनमो ोणभक्तिमि जहासूक्त चारित्रमोह। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीयुषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 16वीं पुस्तक में वही चारित्र मोक्ष अपना का अर्थाधिकार चल रहा है और अभी हम पृष्ठ संख्या 46 पर आ गए हैं। 46। कल ये बात यहाँ चल रही थी कि देखो पेज नंबर 42 पर पहली मूल गाथा बता रहे हैं। यहाँ से क्षपणा संबंधी चार मूल गाथाओं का कथन शुरू हुआ है 42 पृष्ठ। उसमें पहली मूल गाथा हम उसका अर्थ देखते हैं 161 नंबर का। यह क्षपक पृष्ठियों को क्या वेदन करता हुआ क्षय करता है या क्या संक्रमण करता हुआ क्षय करता है या क्या संक्रमण और वेदन दोनों को करता हुआ क्षय करता है या क्या अनुपूर्वी से क्षय करता है और क्या अनुपूर्वी के बिना क्षय करता है, इतने उन्होंने उसमें पृच्छा पूछे थे, प्रश्न पूछे थे। तब उसकी भाष्य गाथा 43 पेज पर नीचे सूत्र का अर्थ यानी गाथा का अर्थ 162 यहाँ लिखा है, ब्रैकेट में डाला उसके, वहाँ बताते क्रोध संग्वलन की प्रथम द्वितीय तृतीय संग्रह पृष्ठि को वेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ भी क्षय करता है, अंतिम 12वीं संग्रह पृष्ठि को वेदन करता हुआ ही क्षय करता है। जब 12वीं लेना है यहाँ तो लोभ की तृतीय नहीं लेना है, सूक्ष्म पृष्ठि को ले, क्योंकि तृतीय जो है वो अपने रूप से उदय में नहीं आती है, वो सारी सूक्ष्म पृष्ठि रूप हो जाती है, और द्वितीय संग्रह पृष्ठि भी अपने रूप से भी उदय में आती है और सूक्ष्म पृष्ठि रूप भी हो जाती है। तो इसलिए वो अंतिम जो है उसके लिए कहते हैं कि वेदन करता हुआ एक क्षय होता है, क्योंकि अभी वो संक्रमित होने के लिए अन्य कोई प्रकृति बची नहीं है, सूक्ष्म पृष्ठि अपने रूप से उदय में आकर नष्ट हो जाती है, तथा शेष सब संग्रह पृष्ठियों को दोनों प्रकार से क्षय करता है, यानी उसका उदय भी होता है और संक्रमण भी होता है दोनों, यानी उदय में आकर भी कितने परमाणु फिर जाते हैं और कितने परमाणु तो पर रूप से यानी आगे आगे वाली संग्रह पृष्ठि रूप से,
नहीं
वेदन का ही अर्थ उदय,
तो ये संग्रह सूक्ष्म पृष्ठि को जो सब भी हुआ ना,
सबका उदय तो है, सूक्ष्म कुष्ठी का भी उदय है, परंतु संक्रमण किस किस का है? पहले सभी का,
पहले सभी का है। पहले क्या है, क्या है?
देखो पहले में शुरुआत कहाँ से हुई? क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्ठी का उदय शुरू हुआ। उदय शुरू हुआ का अर्थ है पहले तो 12 संग्रह कुष्ठी बनी, कहाँ पड़ी थी सब? द्वितीय स्थिति में पड़ी। द्वितीय स्थिति में 12 संग्रह कुष्ठी पड़ी है। अब उसमें से जब क्रोध के कुष्ठी वेदक का समय शुरू होता है तो केवल यानी सिर्फ मात्र क्रोध के प्रथम संग्रह कुष्ठि के परमाणु नीचे आते, अंतर के नीचे, और उसकी प्रथम स्थिति बनती है। तो प्रथम स्थिति बनती है तो एक एक निषेक जब उदय में आएगा तो असंख्यात समय प्रबद्ध निकल जाएगी, तो वो तो निकल रहे हैं ना, यानी उसका क्षय हो रहा, तो कहेंगे वेदन होते हुए क्षय हो रहा। ऊपर तो बहुत सारे परमाणु और भी पड़े हैं प्रथम संग्रह कुष्ठि के, उसका क्या हो रहा है? वो द्वितीय संग्रह कृष्टि, द्वितीय संग्रह कृष्टि और मान के प्रथम में संक्रमित हो रहे हैं, तो संक्रमण द्वारा भी अपने रूप से वो नष्ट हो रहे, यानी दोनों ही संक्रमण द्वारा भी और वेदन द्वारा भी, दोनों ही पद्धति से। ऐसे केवल क्रोध की पहली में नहीं होगी, दूसरी में, तीसरी में, जब जिसका उदय का नंबर आएगा, हाँ वो पहले से 11वें तक वेदन से भी और संक्रमण से भी नष्ट होते हैं, क्षय होते। और जो सूक्ष्म कृष्टि है वो मात्र वेदन से ही नहीं, उसका उदय होकर ही नष्ट होगी, उसके लिए अभी दूसरे किसी में संक्रमित होने के लिए कुछ नहीं बचा। ये बात ख्याल में? ये तो प्रश्न
का संक्रमण अभी चल रहा है, संक्रमण उसके साथ माया का मान का होगा कि खत्म हो जाने के बाद?
नहीं, सबका अपना अपना चल ही रहा है, परंतु मुख्य रूप से जब क्रोध का पहला है वो दूसरे तीसरे और मान के पहले में है, कि सभी का संक्रमण चलता है ना। हमने देखा बंधने वाले में अन्य प्रकृतियों का संक्रमण तो चलता रहता है। ये भी बताया था कौन किसमें संक्रमण करता है, तो मान के पहले में कहां कहां से लोग, क्रोध के तीनों है वो मान के पत्र में आए, यानी क्रोध का पहला है दूसरे में, तीसरे में और मान के पहले में, क्रोध का दूसरा है वो तीसरे में और मान के पहले में, और क्रोध का तीसरा है मात्र मान के पहले, ऐसे हरेक में लगाना, ऐसा उसको कहेंगे व्यय द्रव्य। व्यय और आना कहाँ कहाँ से आता है उसको आय द्रव्य कहा, इसमें आय की बात तो देखेंगे। अब यहाँ ये तो हमने पढ़ा, अब ये 45 पृष्ठ पर आया, ये 162 हो गया ना। वहां लिखते 45 पर संज्वलन क्रोध की प्रथम संग्रह पृष्ठि का वेदन करता हुआ क्षय करता है, अथवा वेदन न करके संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, जो अभी हमने देखा उसी को फिर विभाषा, यानी विभाषा ने उसी को फिर एक्सप्लेन कर, हमने तो गाथा में पढ़ा ही था। अब नीचे का सूत्र, जो दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंध निषेक है उनको वेदन न करते हुए ही क्षय करता है, उसको तो मात्र संक्रमण से ही क्षय करता है, ये नियम है, क्योंकि अभी उसका उदय रुक गया है, तभी तो उसको नवक समय प्रबद्ध कहते हैं। दो समय कम दो आवली काल पहले बंधे हुए वहां पड़े हैं सभी, अपनी अपनी आवली पूरी होती है तब उसका संक्रमण होता है। अब आगे आते हैं 46 पर, यहां से अपना आज का विषय शुरू होता है। पहले ऊपर का सूत्र पढ़ेंगे, पढ़म समय वेदग पहुड़ी जाव तिस्से किट्टी है, चरिम समय वेदगोत्ती ताव एदम किट्टिम वेदेन तो खवेदी, तथा क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पृष्टि के वेदक काल के अंतिम समय से लेकर उसी संग्रह पृष्टि के वेदक का प्रथम चाहिए, परम समय वेदक पहुड़ी प्रथम संग्रह पृष्टि के प्रथम वेदक काल के प्रथम समय से लेकर उसी संग्रह पृष्टि के वेदक काल के अंतिम समय के प्राप्त होने तक, वो अंतिम के बदले प्रथम करो। ये करेक्शन है क्या आपके उसमें कि नहीं? पहले लाइन में जो अंतिम लिखा है उसको प्रथम करना।
हाँ,
पहले लाइन में प्रथम संग्रह कुष्ठी के वेदक काल के उसके आगे अंतिम शब्द है उसके बदले प्रथम लिखना, प्रथम समय से लेकर परम समय वेदक पहुड़ी का ना पहुड़िया ने वहां से। और ऊपर उसका रेफरेंस तो है ही, क्यों हमने करेक्शन किया उसको बताने वाला। यानी प्रथम संग्रह पृष्ठी के वेदक की बात है तो क्रोध संज्वलन के प्रथम संग्रह पृष्ठी के वेदक काल के पहले समय से लेकर अंतिम समय तक क्या होता है, इस संग्रह पृष्ठी को वेदन करता हुआ क्षय करता है। यानी तब तक उसका वेदन चलता है, इतनी बात है, तब तक संक्रमण नहीं होता ये नहीं बता रहे, तब तक उसका उदय चल रहा है। शंका, इसका क्या कारण है? समाधान, क्योंकि इस अवस्था में विवक्षित, विवक्षित का अर्थ होता है पर्टिकुलर, अभी जो स्पेसिफिक जिसकी बात चल रही है, विवक्षित क्रोध संज्वलन संग्रह पुष्टि का वेदक पने के साथ निर्बाध बा करना, निर्बाध हुआ ना, निर्बाध रूप से संक्रामक पना सिद्ध होता है। अब इसी अर्थ को उपसंहार मुख से स्पष्टीकरण करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। उपसंहार करना नहीं, अभी समेटना विषय, जैसे स्कूल में हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे और लास्ट लाइन ऐसे कुछ होती है ना, जैसे स्कूल में हमारे बच्चे लिखते हैं ना कुछ भी, गाय के ऊपर लिखो, मम्मी के ऊपर लिखो, कोई निबंध लिख दिया उन्होंने, मुझे मम्मी बहुत अच्छी लगती है, मुझे गाय बहुत अच्छी तो यहाँ ये वही विषय फिर दोहरा के ये बंद करेंगे अभी। कंक्लूजन उपसंहार ने भी समेटना उसको विषय को, उसमें जो कुछ है फिर दोबारा दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे जो कुछ है, इस प्रकार लिखा ना, इस तरह से, यानी उसका कंक्लूजन कहो, तात्पर्य कहो, सारांश कहो। एवं इदम भी पदम किट्टिम दोहिम पयारेहिम खवेदी किंचिम किंचि कालम वेदेंतो किंचि कालम अवेदेंतो संचुहंतो। इस प्रकार इस प्रथम संग्रह पुष्टि को दो प्रकार से क्षय करता है, वो तो बताया था ना पहले, कुछ काल तक वेदन करता हुआ क्षय करता है और कुछ काल तक वेदन नहीं करता हुआ क्षय करता है। ये कुछ काल क्यों लिखा, उसका कुछ वेदन नहीं करता हुआ भी कुछ काल चलता है क्या उसका संक्रमण? हाँ लक्ष्मी, कुछ काल तक वेदन करता हुआ क्षय करता है और कुछ काल तक वेदन नहीं करता हुआ क्षय करता है। हाँ वो तो चल ही रहा है ना, पहले से ही चल रहा था, तो कुछ काल तक वेदन नहीं करता हुआ ऐसा क्यों कहा? हाँ वो नवक बंद है लास्ट वाला, तभी वो वेदन नहीं करते हुए क्षय करता, ये कुछ काल लिखा, दो समय कम दो हावली तक, ये कुछ काल तक करते वेदन नहीं करते हुए, दो समय कम दो हावली तक, वो नवक बंद की अपेक्षा वहां उसका वेदन नहीं है, यानी उदय नहीं है, उदय रुक गया है। यह सूत्र गतार्थ है, केवल प्रथम संग्रह पृष्टि की यह विधि नहीं है किंतु क्षय को प्राप्त होने वाली द्वितीय आदि संग्रह पृष्ठियों का भी। प्रश्न क्या है? क्षय को प्राप्त होने वाली, यानी जब उसका नंबर आएगा, उसका वेदन चल रहा है, उसी का क्षय चल रहा है, तभी की बात है, यही क्रम जानना चाहिए। यानी शुरू में तो संक्रमण तो सबका, अनुपूर्वी संक्रमण तो सब में चल रहा है, परंतु यहाँ बात क्या है, क्षय होने की बात, यानी संक्रमण होकर पूरा नष्ट होना चाहिए तब जाके ये बात होगी कि जिसका वेदन चल रहा है, शुरू में तो वेदन करता हुआ क्षय करेगा, बाद में नवक बंद जो है वो बिना वेदन करते हुए संक्रमण हो जाएगा उसका। इस प्रकार इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। जहां पढ़म किट्टिम खवेदी तहां विदियम तदियम चौथम जाव एककार सम्मिति। जिस प्रकार प्रथम पृष्टि का क्षय करता है उसी प्रकार दूसरी तीसरी और चौथी पृष्टि से लेकर ग्यारहवीं पृष्टि तक इन संग्रह पृष्ठियों का क्षय करता है। सबके बारे में शुरू में वेदन करता हुआ क्षय करता है और बाद में नवग बंध के बारे में वेदन नहीं करता हुआ क्षय करता है। प्राकृत में एक का रस रसम ही डबल में चाहिए हाँ ती अलग ही होता है तक का अर्थ होता है मिट्टी एक का रसम मिट्टी रसमिति अच्छा अच्छा एक कर दो अपने रसमिति रसमिति एक्चुअली एक का रसम मी चाहिए थी और ती डबल वे अलग चाहिए एक का रसम कितनी पर्यंता एक का रसम इति वो इति के लिए ती शब्द हमेशा तो अलग ही रखते हैं देखो 47 पृष्ठ पर दूसरी लाइन में केरिसु खवना विहिति अब उसके भी नीचे चरिमम वेदे मानोति हमेशा ती शब्द तो अलग ही रखते थे पता नहीं क्यों एक कर दिया हाँ अभी आगे बढ़ेंगे हम 107 नंबर का पॉइंट नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं। जिस क्रोध संगोलन की प्रथम संग्रह पृष्टि का दो प्रकार से क्षय करता है उसी प्रकार जिस प्रकार चाहिए जहां जहां तहां जिस नहीं जिस प्रकार क्योंकि उसी प्रकार आ गया है ना जिस प्रकार क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि का दो प्रकार से क्षय करता है उसी प्रकार ग्यारहवीं संग्रह पुष्टि पर्यंत इत्तक का अर्थ होता है ती डबल ती पर्यंत इन दूसरी आदि संग्रह पुष्टियों का दोनों प्रकार से क्षय करता है। दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंद या इन बात यहाँ पर पुष्टियों का संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है यानी जो लास्ट लास्ट में दो समय कम दो आवली प्रमाण जो बंधे हुए थे उनका तो संक्रमण से ही क्षय होगा तथा उससे अधस्तन पृष्ठियों का अधस्तन उसके पूर्व वाली अपने वेदक काल के भीतर वेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ क्षय करता है यानी उनका संक्रमण चल रहा है उस समय उसका उदय होकर भी खिल रहे हैं दोनों प्रकार से उसका क्षय हो रहा है। इस प्रकार इस सूत्र का भावार्थ है। अब 12वीं बादर सांप्रायिक संग्रह पुष्टि की क्षपणा विधि किस प्रकार की है ऐसी आशंका होने पर आगे के विभाषा सूत्र को कहते हैं। वहां तो अंतिम वाली जो बात है उसकी बात अलग थी अब यहाँ कहते हैं 12वीं यानी 12वीं संग्रह पुष्टि लोक की तृतीय संग्रह पुष्टि उसकी बात करेंगे यहाँ मारसमीय बादर सांप्राय किट्टीय अव्यवहारो मारवी बादर सांप्रायिक पुष्टि में उक्त व्यवहार नहीं है कौन सा वेदन से और संक्रमण से जो होना है वेदन करते हुए तो ऐसा व्यवहार इसमें नहीं है यानी ये प्रोसेस नहीं उसमें कुछ अलग बात क्योंकि उसे सूक्ष्म सांप्रायिक पुष्टि रूप से परिणमाकर क्षपणा होने वाली उसका अपने स्वरूप से विनाश नहीं उपलब्ध होता स्वरूप से यानी बादर तृतीय संग्रह पुष्टि की जो है उस रूप से उसका उदय नहीं होता है। अब चरिमं वेदे मानो खवेदी इस प्रकार इस सूत्र के अवयव का आश्रय करके सूक्ष्म सांप्रायिक पुष्टि की क्षपणा की विधि की प्ररूपणा करते हुए चरिमं वेदे मानो यानी चरिमं यानी लास्ट वाली ने पुष्टि सूक्ष्म पुष्टि लेना तो सूक्ष्म कृष्टि किस तरह से क्षय होती है? अपने रूप से उदय में आकर, उसका संक्रमण नहीं होता। तो उसकी विधि की प्ररूपणा करते हुए, विधि की प्ररूपणा ने उसका प्रोसेस बताएंगे। आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। चरिमं वेदे मानोक्ति अहिप्पायोजा सोम सांप्राय किट्टी सा चरिमा तदोत्तम चरिम किट्टिम वेदेन तो खवेदी न संचुहंतो। चरिमं वेदे मानो, अर्थात ये तो मूल सूत्र का अवयव लिया उन्होंने। अंतिम संग्रह पृष्टि को वेदन करता हुआ, इस पद का अभिप्राय है कि जो सूक्ष्म सांप्राय पृष्टि है वह अंतिम है। ये लोक की तृतीय नहीं समझना, सूक्ष्म सांप्राय पृष्टि को अंतिम कहा, इसलिए उस अंतिम पृष्टि को वेदन करता हुआ क्षय करता है, सपना करता हुआ उसका क्षय नहीं करता। संक्रमण चाहिए यहाँ पर। संक्रमण करता हुआ उसका क्षय नहीं करता। अभी इसी का अर्थ और समझाएंगे। चरिमं वेदय मानो, ऐसा कहने पर अंतिम बादर सांप्रायिक पृष्ठि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी लोक की तृतीय संग्रह पृष्ठि का यहाँ ग्रहण नहीं है, किंतु जो सूक्ष्म सांप्रायिक पृष्ठि है वही अंतिम है, यह यहाँ विवक्षित है। यहाँ पर उसकी बात चले, क्योंकि वह सबसे अंतिम है इसलिए उसकी यह संज्ञा बन जाती है। अतः उस अंतिम पृष्ठि को वेदन करता हुआ ही उसका क्षय करता है, संक्रमण करता हुआ उसका क्षय नहीं करता। ये सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। फिर शंका, ऐसा किस कारण से है? उसका समाधान, क्योंकि उसमें नवकबंध का सद्भाव नहीं पाया जाता तथा उसका प्रतिग्रहांतर उपलब्ध नहीं होता। नवक बंध का सद्भाव नहीं पाया जाता का अर्थ है यहाँ तो कोई बंध ही नहीं है, यानी सूक्ष्म कृष्टि रह गई बाद में और अन्य रूप से कहीं ऐसा कुछ संक्रमण होकर फिर नष्ट हो, ऐसा तो है ही नहीं। बात एक तो ये हो गई, और दूसरी बात क्या, प्रतिग्रहांतर उपलब्ध नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है मंजू? या नहीं, प्रतिग्रहांतर का अर्थ क्या? अन्य प्रकृति जिसमें संक्रमित होना है उसको प्रतिग्रहांतर कहते हैं। अन्य प्रतिग्रह कुछ नहीं है, अंतर यानी अन्य। देखो हम भाषांतर यानी अन्य भाषा में उसको ट्रांसफर करना, देशांतर यानी अन्य देश में जाना, प्रतिग्रह करना यानी जो संक्रमण जिसमें होता है उसको प्रतिग्रह कहते हैं। अभी यहाँ प्रतिग्रह रूप होने वाली अन्य कोई प्रकृति बची नहीं, अभी सूक्ष्म लोभ ही बचा है। अब मोहनी का अन्य कोई है ही नहीं प्रकृति की जिसमें संक्रमित हो जाए। हमने पहले देखा था जब जिस समय अनुपूर्वी संक्रमण होता है तो लोभ का संक्रमण नहीं होता, अनुपूर्वी के बारे में उसका संक्रमण नहीं होता। आप कहेंगे लोभ का तृतीय का द्वितीय हो ना, वो तो लोभ का लोभ रूप ही रहा है, केवल उसका अनुभव कम हुआ था, परंतु अभी अभी तो स्वरूप से उदय में आकर नष्ट हो जाएगी। तो संक्रमण करता हुआ उसका क्षय नहीं करता, यही सूत्र का अर्थ के साथ ये नीचे पढ़ रहे थे। एक मिनट मैं लेती हूँ। हाँ नहीं कर लेना, तो पेज नंबर 47 चरम किट्टिम वेदेन तो किट्टिम बराबर है एक्चुअली, किट्टम कैसे होगा? अभी देखो पहला सूत्र देखो 46 पर जहाँ पढ़म किट्टिम खवेदी, तो वहाँ भी चरिम किट्टिम वेदेन तो बराबर है वो। उन्होंने किट्टम किया है, किट्टी के लिए किट्टम किया, वो किट्टिम चाहिए, यानी उनके शुद्धि पत्रक में शुद्धि पत्रक चाहिए। वहाँ शुद्धि पत्रक में किट्टिम करो, उसका अनुस्वार नहीं था वो देना है। कितने नंबर है? हाँ वो दिख रहा है, बहुत स्पष्ट है किट्टी के ऊपर अनुस्वार। एक्चुअली उसके ऊपर की लाइन में किंतु जा सुम साम्प्राय किट्टी किट्टो हुआ है, वो किट्टी करना, वो उसके ऊपर अनुस्वार नहीं देना। सुम साम्प्राय किट्टी दीर्घ शब्द है और अनुस्वार देते किट्टिम, वो ह्रस्व होके उस पर अनुस्वार देते, वो अलग बात है। हमने समाधान देखा था नवक बंध का सद्भाव नहीं और उसके प्रतिग्रहांतर उपलब्ध नहीं होता, अन्य कोई प्रकृति नहीं कि जिसमें वो संक्रमित हो सके। 48 पेज पर आए। अभी यहाँ पर भी कवे जंती है, कवे जंती यानी वो दी निकालना। अभी इन्होंने जो लिखे है ना वो तो उसमें भी कहीं कहीं अशुद्धियां हो गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब शेष रही 11 संग्रह पुष्टियों की, जो दो समय कम द्वावली प्रमाण नवक बंध पुष्टियां है, सबके लिए बात है। अपनी अपनी जो दो समय कम दो आवली प्रमाण जो नवक बंध वाले जो है समय प्रबद्ध पड़े हैं, उनका संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है। इस प्रकार इस अर्थ विशेष की यद्यपि पहले प्ररूपणा कर आए हैं, फिर भी उसका पुनः स्पष्टीकरण करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। पहले बता चुके हैं क्योंकि उसका स्पष्टीकरण पहले किया, बाद में गाथा बताई, उसका भी अर्थ बताया। यहाँ कहते हैं शेषाणम किट्टिनम दो दो आवलिय बंदे दुसमयूणे चरिमे संचुहंतो चेव खवेदी न वेदेंतो। शेष 11 संग्रह पुष्टियों में प्रत्येक के अंत में जो दो समय कम दो दो आवली प्रमाण नवक बंद शेष रहते हैं, उनका संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, वेदन करता हुआ क्षय नहीं करता। इसीलिए बताया था ना, कुछ काल तक वेदन करते हुए, कुछ काल तक बिना वेदन करते हुए। सूक्ष्म सांप्राय पुष्टि को छोड़कर शेष 11 संग्रह पुष्टियों के अंत में जो दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंध समय प्रबद्ध चाहिए, बंध हुआ है, समय प्रबद्ध ध और द शेष रहते हैं, उन्हें संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, वेदन करता हुआ क्षय नहीं करता, क्योंकि उनका स्वमुख से उदय का संबंध नहीं उपलब्ध होता। यानी उनका भी उदय होने का कोई सवाल ही नहीं, जैसे उनका उदय रूप मिट गया है, अभी आगे वाले संग्रह पुष्टि का उदय शुरू हुआ, तो ये परमाणु क्या होगा? तो पुष्टि रूप होकर द्वितीय संग्रह पुष्टि जिसका भी वहां चल रहा है वैसा चलेगा। यह उक्त कथन का तात्पर्य। इस प्रकार इन दो सूत्रों द्वारा जो वेदी जाकर ही क्षपणा को प्राप्त होती है संक्रमण होकर नहीं, तथा जो संक्रमण होकर ही क्षपणा को प्राप्ति होती है वेदी जाकर नहीं, उन दोनों प्रकार की पुष्टियों का स्वरूप निर्देश करके अब उनके अतिरिक्त जो शेष संपूर्ण पुष्टियां हैं वे दोनों ही प्रकार से क्षय को प्राप्त होती है। पहले क्या बताया? जो वेदन होकर ही संक्रमित है यानी क्षय को प्राप्त होती है, ऐसे कौन सी है? सूक्ष्म पुष्टि संक्रमण कहा कि मैंने उदय कहा वेदन, हाँ उदय, तो मात्र वेदन होता है संक्रमण होता ही नहीं, ऐसी कौन सी है? लास्ट वाली सूक्ष्म पुष्टि। एक बात यहाँ बताए ना क्या क्या बताए, रोगी जाकर ही क्षपणा को प्राप्त होती, संक्रमण होकर नहीं, यह सूक्ष्म पृष्ठ। जो संक्रमण होकर ही क्षपणा को प्राप्त होती है वेदी जाकर नहीं, वो कौन है? नवग्रंथ 11 संग्रह पुष्टियों के नवग्रंथ। ये पहली वाली है सूक्ष्म पृष्ठ। और दूसरा संक्रमण होकर ही क्षपणा को प्राप्त होती है वेदी जाकर नहीं, तो वो है सबके नवक बंध, नवक समय प्रबंध। उन दोनों प्रकार की कृष्टियों का स्वरूप निर्देश करके अब उनके अतिरिक्त जो शेष संपूर्ण कृष्टियां हैं वे दोनों ही प्रकार से क्षय को प्राप्त होती है। अभी शेष संपूर्ण कृष्टियां ने 11 संग्रह कृष्टियां, कल में ये तीन अलग अलग बताए। जो मात्र वेदन से ने उदय से वो सूक्ष्म पृष्टि, जो मात्र संक्रमण से वो नवक बंध, सबके 11 संग्रह कृष्टियों के नवक बंध, और जो दोनों से यानी 11 संग्रह कृष्टियों रेगुलर। अब आगे चरम किट्टिम वज्ज दो आवलिय दुसमयूण बंधे च वज्ज जम शेष किट्टिनम तम उभयेन खवदि। उभय ने दोनों अंतिम सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि को छोड़कर तथा प्रथमादि 11 संग्रह कृष्टियों के दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक समय प्रबद्धों को छोड़कर जो हमने ऊपर अभी देखे थे, उन शेष रही 11 संग्रह कृष्टियों की जो कृष्टियां शेष रहती है उन्हें दोनों प्रकार से क्षय करता है। शेष रहती है इन्हें नवक बंध को छोड़कर बाकी जो है वो उदय में आकर और संक्रमण होकर दोनों ही पद्धति से नष्ट होती, क्षय होती है। यह सूत्र गतार्थ है, उसका अर्थ बहुत बार पहले भी आया था। अब यहाँ इस सूत्र में उभयेन यह जो पद आया है उसके अर्थ का खुलासा करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। उभय का अर्थ ही होता है दोनों। मराठी में तो ये शब्द आता है, आप गुजराती में आता है? नहीं, उभय शब्द नहीं है। अच्छा, हम किसी को आमंत्रण देते ना, मैरिज कार्ड देते, अब उभयता आना, उभयता है ना, दोनों ही आना इस तरह से। हमने वो मनोयोग वचन योग में देखा था ना, सत्य असत्य उभय और अनुभय, दोनों नहीं है वो अनुभय। अभी आजकल कहना पड़ेगा अनुभय आना। अभी उसको सूत्र कहिए किम उभयेन इति, इति अलग है ना, उभय प्रकार से इसका क्या अर्थ है, उभय प्रकार से इसका क्या अर्थ है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, उसका जवाब देते हैं। वेदेन्तोच संचुहंतोच एवं उभयम् एदम उभयम्, वेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ क्या है, तो क्षय करता है वो तो अध्यारत है, टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उसी का विषय चल रहा है। यह उभय पद का अर्थ है, पहले बताया था वेदन करता हुआ, फिर बताया था संक्रमण करता हुआ, अब कहते उभय ने दोनों ही कर, एक बाजू वेदन भी चल रहा है एक बाजू संक्रमण भी चल रहा है। वेदक भाव से और संक्रमण करने के भाव से क्षय करता है, यह उभय शब्द का अर्थ जानना चाहिए। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। विशेषा सब मिलाकर 12 संग्रह कृष्टियां हैं, उनमें से प्रत्येक की अनंत अंतर कृष्टियां हैं, और अंतर कृष्टि कहो या अवयव कृष्टि भी नाम दिया था उसको, उनकी क्षपणा कैसे होती है, वेदन करके क्षपणा होती है या संक्रमण करके क्षपणा होती है या दोनों प्रकार से क्षपणा होती है, यह एक मुख्य प्रश्न है। इसका समाधान करते हुए बतलाया गया है कि प्रारंभ की जो 11 संग्रह पुष्टियां हैं और उनकी जो अवान्तर पुष्टियां, अवान्तर को अंतर को अवयव को एक ही बात, यानी उनकी जो सब डिवीजन वाली सब कृष्टियां हैं उनमें से प्रत्येक के वेदन करने के अंत में जो दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंद समय प्रपत्र बचते हैं उनका अगली यानी नेक्स्ट हिंदी वाला अगले संग्रह कृष्टि में संक्रमण होकर ही वेदन होता है। गुजराती में अगले ने प्रायर, हिंदी में अगले ने नेक्स्ट। तो पहले संग्रह कृष्टि का द्वितीय संग्रह कृष्टि में संक्रमण। उनका अगले संग्रह कृष्टि में संक्रमण होकर ही वेदन ने एक मिनट उनकी अवान्तर कृष्टियां हैं उनमें से प्रत्येक के वेदन करने के अंत में जो दो समय कम दो अवली प्रमाण नवक बंद समय प्रबद्ध बचते हैं शेर होता है वेदन होता है नहीं पहले उसको क्षय कहेंगे पेंसिल से बाद में करेंगे क्षय होता है तथा दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंध के अतिरिक्त उनको छोड़कर जितनी भी संग्रह कृष्टियां और उनके अवान्तर कृष्टियां हैं उन सबका वेदन और संक्रमण होकर ही क्षय होता है। ऊपर संक्रमण होकर ही वेदन लिखा है ना वेदन के बदले क्षय लिखना चाहिए ऊपर से तीन तीन छठी लाइन में है अगली संग्रह कृष्टि में संक्रमण होकर ही क्षय होता है वहां क्षय करो यानी क्षय लिखो ख्याल में वही बात दोहराई है फिर शेष रही बारहवीं संग्रह कृष्टि और उसकी अवान्तर कृष्टियां सो ये कृष्टिकरण के काल में बादल रूप से ही कृष्टिपने को प्राप्त होती है परंतु इसका अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में ही सूक्ष्म कृष्टि रूप से परिणमन हो जाता है। बनी थी तो बादल कृष्टि रूप से बनी थी लोक की द्वितीय संग्रह कृष्टि ये तो बादल कृष्टि परंतु द्वितीय संग्रह कृष्टि का जब वेदन चल रहा है तो उस काल में इसका सूक्ष्म कृष्टि रूप हो जाती है अतः सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में वेदन होकर ही इनका क्षय होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार इतने सूत्र प्रबंध द्वारा एक भाष्य गाथा के साथ प्रथम मूल गाथा के अर्थ की विभाषा करके अब यथावसर प्राप्त दूसरी मूल गाथा के अर्थ की विभाषा करते हुए इस सूत्र को कहते हैं। शपक संबंधी चार गाथाएं आई ना उसकी बात यहाँ चली 50 पृष्ठ पर आया एक तो विधीय मूल गाथा इसके आगे दूसरी मूल सूत्र गाथा की समुद्र कीर्तना करते हैं यानी गाथा बताएंगे। यह सूत्र सुगम है 163 नंबर का जम्बे देंतो किट्टिम हवेदि किं चा विबंध गोतिस्से जं चा विसंचुरन्तो तिस्से किं बंधगो होदि कृष्टि वेदक शपक जिस कृष्टि का वेदन करता हुआ क्षय करता है क्या कहा कृष्टि का वेदन चला जैसे क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन करता हुआ क्षय चल रहा है तो क्या उसका वह बंधक भी होता है यानी क्या वहां उसका नया बंध भी हो रहा है उस रूप से तथा जिस कृष्टि का संक्रमण करता हुआ क्षय करता है उसका भी क्या वह बंधक होता है ये दो प्रश्न पूछे यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा देना प्रश्न ख्याल में है ना कृष्टि का वेदन हो रहा है तो उसका बंध है कि नहीं ये बात पूछ रहे तो सूक्ष्म सांप्राय कृष्टि जो है उसका वेदन करता हुआ क्षय होता है तो उसका बंध होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है परंतु बाकी 11 संग्रह कुष्ठियों का वेदन करते हुए क्षय हो रहा है, उस समय उसका बंद हो रहा है। और जो मात्र संक्रमण से क्षय होता है, मैंने तो पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे यहाँ क्या कहना चाहते हैं, नवक बंध का संक्रमण से क्षय होता है तो वहाँ उसका बंध है क्या? लक्ष्मी क्रोध का मान रूप, अभी क्रोध का क्रोध में मत सोचो, क्रोध का मान रूप हो रहा है, क्रोध की तृतीय संग्रह कुष्ठी का वेदन चल रहा है, इसके बाद मान के प्रथम संग्रह कुष्ठी का वेदन होने वाला है, तभी क्रोध का तृतीय संग्रह कुष्ठी का पहले तो वेदन होते हुए संक्रमण हो गया, ऊपर से संक्रमण हुआ या वेदन भी हो रहा, उसके नवक बंध बचे, अब मान का उदय शुरू हुआ है, बंध कितने का होगा? मान माया लोक का ही होगा, क्रोध का बंध नहीं, यानी नवक बंध का संक्रमण होता है उस समय उसका बंध नहीं। अब यहाँ क्या कहते देखेंगे, यह दूसरी मूल गाथा, कृष्टियों का क्या वेदन करने वाले एक शपक का, हाँ वेदन करने वाले एक शपक का, क्या नहीं चाहिए वहां, यह दूसरी मूल गाथा कृष्टियों का वेदन करने वाले एक शपक का, वेदी जाने वाली या नहीं वेदी जाने वाली, स्वरूप से क्षय को प्राप्त होने वाली, स्वरूप से नहीं कहना वेदी जाने वाली स्वरूप नहीं, वेदी जाने वाली स्वरूप से क्षय को प्राप्त होने वाली कृष्टियों के होने पर किनका बंध के साथ क्या संबंध है अथवा किनका बंध के साथ संबंध नहीं है, इस प्रकार इस अर्थ विशेष का पृच्छा द्वारा प्रतिपादन करने के लिए अवतीर्ण हुई है। ये गाथा क्यों आई, उसमें क्या पूछा है, फिर दोबारा रिपीट करके बता रहे, फिर से दूसरी मूल गाथा में क्या बताया है, जो कृष्टियों का वेदन चल रहा है एक शपक का, क्रोध की मान की माया की सबका, जो तो वेदे जाने वाली या नहीं वेदी जाने वाली स्वरूप से क्षय को प्राप्त होने वाली कृष्टियों के होने पर,
क्या निकाल
पहला क्या निकाला था, दूसरे बाद है ना, वेदी जाने वाली या नहीं वेदी, अच्छा अच्छा किनका बंध के साथ संबंध है, हाँ लाइन न गिनो ना ऊपर से, दूसरी लाइन का किनका बंध के साथ संबंध है अथवा किनका बंध के साथ संबंध नहीं है, ये वाला क्या निकालना है, वहां पर भी क्या नहीं चाहिए, यह दूसरी मूल गाथा कृष्टियों का वेदन करने वाले शपक का, वेदी जाने वाली या नहीं वेदी जाने वाली स्वरूप से क्षय को प्राप्त होने वाली कुष्ठियों के होने पर किनका बंध के साथ संबंध है अथवा किनका बंध के साथ संबंध नहीं है, दोनों जगह क्या नहीं चाहिए था, इस प्रकार इस अर्थ विशेष का पृच्छा द्वारा प्रतिपादन करने के लिए अवतीर्ण हुई है, क्योंकि इस गाथा में उस प्रकार की अर्थ विषयक पृच्छा का निर्देश स्पष्ट रूप से ही देखा जाता है, यानी वो प्रश्न स्पष्ट रूप से ख्याल में आ रहे ऐसे है, यथा फिर दोबारा बता रहे, जम किट्टिम वेदन, वेदन तो है, वेदन तो चाहिए ना, वेदन तो करो, अब तक हमने हर एक गाथा में वेदन को ही पढ़ा था, ऊपर भी वेदन तो है प्राकृत में ना, तम जहां जम वेदन तो किट्टिम, जम किट्टिम वेदन तो ऐसा कहने पर नियम से जिस कृष्टि का वेदन करता हुआ उसकी क्षपना करता है, क्या उस कृष्टि का वह बंधक है या बंधक नहीं होता, इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध में इस सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है, इसका भाव है, दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंध को छोड़कर शेष 11 संग्रह कृष्टियों और अंतर कृष्टियों को वेदन करने वाला क्षय करता है, यह उक्त सूत्र गाथा में कहा गया है। और इस प्रकार क्षय करता हुआ वह क्षपक उस अवस्था में जिस जिस कृष्टि का क्षय करता है, उस कृष्टि का वह क्या नियम से बंधक होता है या अबंधक ही रहता है, अथवा क्या कथनचित बंधक होता है और कथनचित बंधक नहीं होता, इस प्रकार यह पृच्छा की गई है। एक प्रश्न समझाया, आगे बताते जम चावि संचु अंतो, सेकंड लाइन की बात है, गाथा की सेकंड लाइन। वी यानी पी, पी क्या अपि जम ची, वी है प्राकृत में भी आता है, जो संस्कृत में अपि आता है वो प्राकृत में भी आता है। जम चावि संचु अंत ऐसा कहने पर नियम से जिस कृष्टि का संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, उसका क्या बंधक होता है या इस प्रकार नहीं होता, इस सूत्र गाथा के उत्तरार्ध में इस गाथा सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। इसका भावार्थ, दो समय कम दो आवली प्रमाण कृष्टियों का संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, वेदन करता हुआ क्षय नहीं करता, ये तो पहले बताया गया। और इस प्रकार क्षय करता हुआ उस अवस्था में, ये पहले तो ये बताया था, तो अब ऐसा जीव बंध करता है या नहीं करता ये बात चल रही, तो कहते उस अवस्था में विवक्षित संग्रह पुष्टि का क्या बंधक होता है अथवा बंधक नहीं होता, यह पृच्छा की गई। इस प्रकार इस दूसरी मूल गाथा में पृच्छा द्वारा कहे गए अर्थ विशेष के निर्णय का विधान करने के लिए इस विषय में एक भाष्य गाथा आई है, उसकी समुत्कीर्तना और विभाषा करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। कहते एदिस से गाहाय एक्का भाष्य गाथा, इस मूल गाथा की एक भाष्य गाथा है, यह सूत्र सुगम है। जहा जैसे यह सूत्र सुगम है, अब यहाँ भाष्य गाथा बता रहे हैं 164 और यहाँ 217 नंबर है। जमचा विसंचु हंतो खवेद किट्टिम अबंध गोति से सुमं सांपराये अबंध गो बंद गिदरासिम। समझ में आई बात, जम चावि संचु हंतो, जो मात्र संक्रमण से क्षपणा करता है वो उसकी टीका अबंधक होता है। सूमी सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय में अबंधक है, अबंधक हो बंधक इधर आसिम शेष का बंधक है, यानी जो वेदन से भी और संक्रमण से जब करता है, जिसका वेदन है तो उसका वो बंधक भी है। अब आगे नीचे हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। जिस कृष्टि का संक्रमण करता हुआ ही लगा ना, चावी अपि यानी संक्रमण से ही क्षय करता है, उसका वह बंधक नहीं होता। संक्रमण से ही किसका होता है, तो नवक बंधक, तो जब नवक बंधक का संक्रमण करता है उस समय उस कषाय का बंधन नहीं रहता, यानी उस कृष्टि रोग से बंधन नहीं है। क्रोध के प्रथम संग्रह कृष्टि का उदय मिट गया, प्रथम संग्रह कृष्टि रूप से जो बंधे थे वो नवक बंध रूप से पड़े रहे। अब उदय द्वितीय संग्रह कृष्टि का चला, क्रोध का ही चल रहा है पर द्वितीय संग्रह कृष्टि का उसका अनुभाग कम है। अब वो जो बचे हुए उसका क्या हुआ, वो द्वितीय संग्रह कृष्टि रूप से परिणत होकर नष्ट हो गया, उसको कहेंगे संक्रमण से ही नष्ट हो गया, क्षय होता है। तथा सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय पृष्टि का वह अबंधक रहता है, उसके उदय होते हुए भी उसका बंधन नहीं होता। अबंधक रहता है किंतु शेष कृष्टियों का वेदन होकर क्षपण काल में वह उनका बंधक होता है। वेदन होकर क्षपण काल यानी एक बाजू उसका उदय भी चल रहा है, क्षपणा भी चल रही है, संक्रमण भी चल रहा है, तो वो नष्ट निक्षय हो रहा है उसका, उस काल में उसका बंधन भी है। अब 52 पृष्ठ पर आते हैं। तीसरी लाइन में हा दिए ना, वो खोदी करना, सुगमक सुगमम करना। वैसे अस्पष्ट है। हाँ, तीसरी लाइन में हादी लिखा था, होदी अबंधक वो होदी, और विहासा के नीचे सुगम, वो तो दिख रहा है स्पष्ट। हाँ, अभी हम इस गाथा का अर्थ कहते हैं। यथा दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंध स्वरूप जिस कृष्टि का संक्रमण द्वारा क्षय करता है, अभी इसके लिए ही लगाया था, उस अवस्था में उसका नियम से अबंधक होता है, क्योंकि वहां उसके बंध की शक्ति का होना अत्यंत असंभव है। अब उसका वहां पर वैसा बंधन नहीं हो सकता, परंतु शेष कृष्टियों का बंधक होता है, क्योंकि बादर सांप्राय गुणस्थान में क्षय को प्राप्त होने वाली कृष्टियों का अपने वेदक काल प्रमाण काल तक उनके बंध के संभव होने में विरोध नहीं पाया जाता। संभव इन्हें पॉसिबिलिटी नहीं, संभव इन्हें वो बंध होता है। हम मराठी में तो संभव किसको कहते, पॉसिबिलिटी, वैसी नहीं, वहां बंध हो रहा है। अब इसी सूत्र संबंधी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। ये जो हमने भाष्यगाथा देखी थी उसी की यहाँ विभाषा करेंगे, विहासा। अब उक्त भाष्य गाथा की विभाषा की जाती है, की अलग चाहिए, नहीं तो विभाषा की जाती है ऐसा अलग। उसका नहीं है करेक्शन। यह सूत्र सुगम, अब सूत्र पढ़ेंगे। जम जम खवेड़ी किट्टिम नियमातिस्से बंधगो मोत्तुन दो दो आवलीय बंदे दुसमयुने सुम सांप्राय किट्टियो च। कहते जिस जिस कृष्टि का क्षय करता है वह दो समय कम दो दो आवली प्रमाण नवक बंध कृष्टियों को तथा सूक्ष्म हुआ सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों को छोड़कर उनका नियम से बंधक होता है। क्या कहते हैं, यानी जिसका जिसका क्षय हो रहा है उसका उसका बंधक होता ही है, एक्सेप्ट दो समय कम दो आवली मात्र नवक बंध और सूक्ष्म कृष्टि, बाकी का क्षय भी चलता है बंध भी चलता है। इसका विभाषा ग्रंथ सुगम है, इसलिए इस विषय में कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है। विशेषार्थ, इसकी गाथा 206 की विभाषा करते हुए बतलाया है, तो पहले हो चुकी थी ना, इसी पेज में पुस्तक में आई थी कि पहले पुस्तक में आई थी, 206 कहाँ हुई, यहाँ नहीं आई थी, एक सौ छो कैसे, यहाँ से 207 से शुरू हुई है 14 पेज पर, ये पहले हम पढ़ चुके थे, देखते इसकी गाथा 206 की विभाषा करते हुए बतलाया है कि क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पृष्ठी का वेदन करने वाला क्षपक, ये तो पहली पुस्तक में आई थी 15वीं पुस्तक में, चारों संज्वलन कषायों की प्रथम संग्रह पृष्ठी का बंद करता है। इस पर यह शंका की गई है कि क्या इस प्रकार क्रोध संज्वलन की दूसरी संग्रह पृष्ठी का वेदन करने वाला जीव, जीव बराबर करना, चारों कषायों की क्या दूसरी संग्रह पृष्ठी का बंद करता है, ये तो पहले पुस्तक में अपनी चर्चा समाधान हुआ था, तो कहते उसका दूसरी का नहीं उसके पहले का ही होगा। इसका समाधान करते हुए बतलाया है जिस संज्वलन कषाय की जिस संग्रह पृष्ठी का वेदन करता है उस कषाय की उस संग्रह पृष्ठी का बंद करता है तथा शेष कषायों का प्रथम संग्रह शेष कषायों की चाहिए प्रथम संग्रह पृष्ठियों का बंद करता है। क्या कहना चाहते हैं, मान लेते हैं अभी क्रोध की द्वितीय संग्रह पृष्ठी का उदय चल रहा है तो क्रोध का बंधक किस रूप से हो रहा है, दूसरी संग्रह पृष्ठी और मान माया लोक का प्रथम संग्रह पृष्ठ। ऐसा नहीं कि क्रोध की द्वितीय का हो रहा है तो मान माया लोक का ही द्वितीय का होगा, ऐसा नहीं है, उन बाकी के सब प्रथम का। और इसका भी समझा अभी क्रोध की तीसरी का नंबर आया उसका बंधक हो रहा है, मान माया लोक का तो प्रथम का ही होगा। 53 पेज पर इस प्रकार दूसरी मूल गाथा के अर्थ का विशेष व्याख्यान समाप्त करके अब यथावसर प्राप्त तीसरी मूल गाथा के अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए उसका अवसर उपस्थित करने के लिए आगे के प्रबंध को आरंभ करते इत्तो तदिया मूल गाथा। इसके बाद तीसरी मूल गाथा है, यह सूत्र सुगम है, तम जहा वह जैसे यह सूत्र भी सुगम है। यहाँ लिखा ना अवसर उपस्थित करने के लिए भी उसका इंट्रोडक्शन कर रहे कि अभी तीसरी गाथा यहाँ शुरू होती है, ये तीसरी गाथा यहाँ बताएंगे। जम जम खवेदि किट्टिम ठिदि अनुभागे सुखे सुधीरे दी संचुअदि अन्न किट्टिम से काले तासु अन्नासु। इसका अर्थ जिस जिस संग्रह कृष्टि का क्षय करता है उस कृष्टि को किस किस प्रकार के स्थिति और अनुभागों में उदीरित करता है, यानी कैसी स्थिति और अनुभाग कैसे किस प्रदेश से उसका उदीरित हो जाती है, विवक्षित कृष्टि को अन्य कृष्ठ में हुआ है कृष्टि में अन्य कृष्टि में संक्रमण करता हुआ, क्या कहते विवक्षित कृष्टि को अन्य कृष्टि में संक्रमण करता हुआ किस किस प्रकार के स्थिति और अनुभागों से युक्त पृष्ठि में संक्रमण करता है तथा विवक्षित समय में जिस स्थिति और अनुभाग युक्त पृष्ठियों में उदीर्णा संक्रमण आदि किए हैं अनंतर समय में क्या उन्हीं पृष्ठियों में उदीर्णा संक्रमण आदि करता है अथवा अन्य पृष्ठियों में करता है, पढ़ेंगे अभी इसको, यानी वहां किस रूप से उसके अनुभाग और स्थिति की क्या पोजीशन है उसकी बात पूछ रहे, ये तो प्रश्न है उसका भी उत्तर तो आएगा। प्रश्न चिन्ह, हाँ गाथा है ना इसलिए ऊपर नहीं दिया प्रश्न चिन्ह पर नीचे दे सकते हैं। यह तीसरी मूल गाथा पृष्ठियों के क्षय को प्राप्त होते हुए उस अवस्था में विवक्षित संग्रह पृष्ठी के विषय में बंध के साथ होने वाले स्थिति और अनुभागों की उदीर्णा और संक्रमण की प्रवृत्ति विशेष का उदाहरण करने के लिए अवतीर्ण हुई है। अब इसके प्रत्येक चरण का अर्थ कहते हैं, पहले इसको अर्थ समझाएंगे फिर उसका उत्तर बताएंगे। वह जैसे जम जम खवेदी किट्टिम ऐसा कहने पर जिस जिस संग्रह पुष्टि का क्षय करता है उस संग्रह पुष्टि का किस किस प्रकार के अनुभवों में उदीरित करता है। वृष्टिका के कृष्टि को क्या सामान्य से सब स्थिति विशेषों में और अनुभाग विशेषों में उदीरना प्रवृत्त होती है या वहाँ कोई विशेष नियम है, यह पूछा गया है। इस प्रकार यह गाथा के पूर्वार्ध में सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। ये तो प्रश्नों के अर्थ बता रहे हैं। आगे कहते हैं संचोध्य अन्न किट्टिम, ऐसा कहने पर विवक्षित संग्रह कृष्टि का अन्य कृष्टि में संक्रमण करता हुआ किस प्रकार की स्थिति और अनुभाग में विद्यमान उनका विवक्षित संग्रह पुष्टि का संक्रमण करता है। क्या सामान्य से सब स्थितियों और अनुभाग पुष्टियों को अन्य पुष्टि रूप से संक्रमित करता है या इस विषय में कोई विशेष संभव है। इस प्रकार यह दूसरी पृच्छा स्थिति अनुभाग और संक्रम की प्रवृत्ति विशेष की अपेक्षा करता है। मैंने यहाँ तीनों पूछा है, स्थिति अनुभाग और संक्रम, तथा स्थिति अनुभाग और बंध विषयक पृच्छा का निर्देश भी इसी में लिया है। कहते बंध का नाम नहीं लिया, बंध भी इसमें समझना चाहिए, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र की देशामर्शक रूप से प्रवृत्ति स्वीकार की गई है कि अलग निकालो। अतः विवक्षित संग्रह कृष्टि की क्षपणा होते समय स्थिति अनुभाग और उदीर्णा तथा तद विषय अपकर्षण पर प्रकृति संक्रमण स्थितिबंध और अनुभाग बंध किस प्रकार प्रवृत्त होते हैं, इस प्रकार यह प्रकृति में सूत्र का समुदाय रूप अर्थ है। यानी जो जो कोई प्रोसेस हो रहे अपकर्षण पर प्रकृति संक्रमण वगैरह सबके बारे में यहाँ प्रश्न पूछे। अभी ये प्रश्नों का ही अर्थ और बता रहे। से काले तासु अन्नासु, ऐसा कहने पर विवक्षित समय में जिन स्थिति और अनुभाग कृष्टियों में बंध उदीर्णा और संक्रम प्रवृत्त हुए हैं, क्या उन्हीं में अनंतर समय में प्रवृत्त रहते हैं या उनसे अन्य में ये प्रवृत्त रहते हैं। यानी यहाँ जो बंध है या जो कुछ वहाँ जो बात चल रही है उदीर्णा आदि है संक्रमण है, तो नेक्स्ट समय में क्या वो ही है क्या अन्य है, ये पूछे। इसके द्वारा बंध के साथ होने वाले स्थिति अनुभाग संक्रम और उदीर्ण का प्रत्येक समय में प्रवृत्ति विशेष किस प्रकार का होता है, इस तरह इस प्रकार का अर्थ विशेष सूचित किया गया जानना चाहिए। इसी के द्वारा अन्य भी प्रकृति में उपयोगी अर्थ विशेष देशामर्शक रूप से सूचित किया गया है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। अब इस तीसरी मूल गाथा के अर्थ की विभाषा करते हुए उससे संबंध रखने वाली भाष्य गाथाओं की संख्या का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यदि से दस बास गाथा गाओ, इस मूल गाथा सूत्र की दस भाष्य गाथाएं हैं, यानी विषय लंबा चलेगा। वैसे तो ये विषय आ चुका है, फिर भी यहाँ पर और भी स्पष्टीकरण करेंगे। यह सूत्र सुगम है, यानी दस भाष्य गाथा, ये तो स्टेटमेंट तो आसान है समझना। इस विषय में संबंध रखने वाली दस भाष्य गाथाएं स्पष्ट रूप से ही उपलब्ध होती है। अब वे दस भाष्य गाथाएं कौन सी है ऐसी आशंका होने पर यथाक्रम से ही उनकी समुत्कीर्तना और विभाषा करते, एक एक की समुत्कीर्तना ने गाथा बताएंगे उसकी विभाषा करेंगे, आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। तथ्य परमाय भाष्य गाथाए समुत्कीर्तना, उनमें से प्रथम भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। उन 10 भाष्य गाथाओं में से यहाँ सर्वप्रथम भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना की सर्वप्रथम प्रथम भाष्य गाथा चाहिए दससु भाषगाहासु परम भाषगाहाय प्रथम भाष्य गाथा की सर्व नहीं चाहिए उन 10 भाष्य गाथाओं में से यहाँ प्रथम भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना या सर्वप्रथम प्रथम भाष्य गाथा की एक प्रथम शब्द और जोड़ दो तो अच्छा है यह कहा गया यानी पहली भाष्य गाथा पहले में सबसे पहले बताई ये 166 लिखा है ना बंधो वसंकमो वा नियमा सर्वे सुठिदि विशेषेषु सर्वे सुचानुभागेषु संकमो मज्जिमो उदौ विवक्षित पृष्टि का बंध और संक्रम नियम से क्या सभी स्थिति विशेषों में होता है यानी क्या कहते हैं विवक्षित पृष्टि का स्थिति बंध सभी स्थिति विशेषों में नहीं होता परंतु स्थिति संक्रम उदयावली को छोड़कर सभी स्थिति विशेषों में होता है यह उत्तर दे दिया उन्होंने क्या कहते हैं स्थिति विशेष यानी जितने सत्ता में पड़े वो स्थिति विशेष निषेक तो सत्ता में जितने निषेक हैं क्या बंध उस रूप हो रहा है तो यदि बंध होता है तो नीचे आबादा है तो वहां तो कुछ निषेक रचना नहीं है और फिर ऊपर में जितनी सत्ता है उतना तो बंध होता नहीं है हमेशा उसके संख्यात विभाग ही होता है तो वो वहां पर भी नहीं है अब संक्रमण की बात पूछ रहे हैं तो संक्रमण स्थिति संक्रमण जो है स्थिति संक्रमण यानी क्या है हाँ तो कहते कि उदयावली में तो संक्रमण नहीं होता उसके ऊपर होगा वो स्थिति में संक्रमण होता है अब इसको समझेंगे और तथा विवक्षित पृष्टि के अनुभाग का सभी अनुभाग संबंधी भेदों में संक्रमण होता है मात्र जिस कृष्टि का वेदन करता है उसका मध्यम कृष्टि के रूप से उदय होता है हमने देखा था उदय रूप जो सीधे दोनों ओर असंख्या का भाग छोड़ दो बीच वाले कृष्टि रूप से उदय होता है 56 पेज पर आए यह प्रथम भाष्य गाथा अपने पूर्वार्ध द्वारा पूर्वार्ध ने फर्स्ट हाफ ऊपर का लाइन ऊपर की लाइन कृष्टि वेदक के क्षपक संबंधी यानी जो क्षपक कृष्टि का वेदन कर रहा है उसकी बात है उस संबंधी स्थिति बंध और स्थिति संक्रम का निर्णय करने के लिए अवतीर्ण हुई है वहां स्थिति बंध किस रूप से है और उसका जो संक्रमण होता है स्थिति का वो किस रूप से है बंध और संक्रम नियम आते निश्चय से ही क्या सभी स्थिति विशेषों में होता है या सभी स्थिति विशेषों में नहीं होता इस प्रकार पदों के अभिसंबंध के वश से पद यानी वो जो गाथा में शब्द आए उसको पद कहते हैं उसका अभिसंबंध यानी वो शब्दों के अनुसार जो बता रहे हैं स्पष्ट रूप से ही यहाँ पर स्थितिबंध और संक्रम के निर्णय के विधान का अर्थ के साथ संबंध देखा जाता है यानी यहाँ स्थितिबंध और स्थिति संक्रम के बारे में पूछा गया है उसी का निर्णय करना है और यह गाथा का पूर्वार्ध पृच्छा सूत्र ही है निर्देश सूत्र नहीं है यानी वो प्रश्न है वो कथन नहीं है उसका स्टेटमेंट या उसका उत्तर नहीं है यह आगे चुन्नी सूत्रकार स्वयं ही कहेंगे इसलिए वही उसका निर्णय करेंगे यहाँ तो केवल प्रश्न समझना है प्रश्नों के जवाब तो आगे के सूत्र में आने वाले इस कारण गाथा के उत्तरार्ध द्वारा भी अभी उत्तरार्ध वहां पूर्वार्ध था फर्स्ट हाफ उत्तरार्ध यानी सेकंड हाफ सेकंड लाइन यहां पर लेना गाथा के उत्तरार्ध द्वारा भी कृष्टि विषयक अनुभाग संक्रम और अनुभाग उदय की, यानी किस रूप से अनुभाग का संक्रमण हो रहा है और अनुभाग किस रूप से उदय में आ रहा है, उसकी प्रवृत्ति विशेष इस प्रकार होती है। इस बात का निर्णय करने के लिए यह भाष्य गाथा उत्तीर्ण हुई है, क्योंकि विवक्षित संग्रह पृष्टि के अनुभाग संबंधी सभी भेदों में संक्रमण होता है, यानी उसका जो अनुभाग है संक्रम संग्रह संग्रह करना, विवक्षित संग्रह पृष्टि के क्या कहते हैं विवक्षित संग्रह, क्योंकि विवक्षित संग्रह पृष्टि के अनुभाग संबंधी सभी भेदों में संक्रम होता है, परंतु उदय मध्यम पृष्टि रूप से ही जाना जाए। अनुभाग के बारे में सभी में संक्रमण होगा, उदय मध्यम रूप से होगा। इस प्रकार गाथा के उत्तरार्ध में अनुभाग विषयक संक्रम और उदय के निर्णय का कथन स्पष्ट रूप से देखा जाता है, और यह गाथा का उत्तरार्ध निर्देश सूत्र ही है, पृच्छा सूत्र नहीं है। निर्देश सूत्र यानी बताने वाला सूत्र है, पूछने वाला नहीं है, उसमें तो बता दिया, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब इस प्रकार के अर्थ के साथ संबंध रखने वाली इस प्रथम भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा करते हुए सर्वप्रथम गाथा के पूर्वार्ध में निर्देश सूत्र की अभाव विषय आशंका के निराकरण द्वारा पृच्छा सूत्र रूप अर्थ का समर्थन करने के लिए आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। यहाँ पूछ दे, वहां तो प्रश्न पूछा है, वहां तो कोई जवाब दिया ही नहीं है, उसका कुछ निर्णय नहीं होता है, तो यहाँ निर्देश सूत्र है ही नहीं है, ऐसी जिसे प्रश्न इसका आशंका है उसके लिए यह सूत्र आता है। बंधो व संकमो व नियमा सव्यु ठिधि विशेषति एदम पुनः पुच्छा सूत्रम। बंध और संक्रम नियम से सब स्थिति विशेष में होता है क्या, इससे यह जाना जाता है कि क्या यह व्याकरण यानी व्याख्यान सूत्र है, परंतु व्याकरण सूत्र न होकर पुच्छा सूत्र है। क्या क्या कहते व्याकरण यानी व्याख्यान, व्याख्यान सूत्र है या पृच्छा सूत्र है, उन्होंने निर्देश सूत्र बताया। यहाँ ना बंदर संक्रम नियम से सब स्थितियों में विषय में होता है ऐसा नहीं पूछा, होता है क्या ऐसा पूछा, उसका अर्थ ये प्रश्न है। अब इसका अर्थ कहते हैं एदम नज्जदी, एदम नज्जदी ऐसा कहने पर यह जाना जाता है कि क्या यह व्याकरण सूत्र है या व्याख्यान सूत्र है, जिसके द्वारा व्याक्रियते अर्थात विशेष रूप से पूरी तरह से मीमांसा की जाती है उसे व्याकरण सूत्र कहते हैं, उसका अर्थ होता है प्रतिवचन। परंतु यह व्याकरण सूत्र न होकर पृच्छा सूत्र है, यह तो पृच्छा सूत्र ही है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि गाथा सूत्रकार का अभिप्राय उसी प्रकार का है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है, यानी गाथा सूत्रकार इसको प्रश्नात्मक ही रखना चाहते थे। शंका, यह कैसे जाना जाता है कि यह प्रश्न वाक्य ही है किंतु यह प्रतिवचन सूत्र नहीं है। समाधान, अब यहाँ इसका उत्तर कहते हैं स्थिति और स्थिति संक्रम जिस प्रकार पूर्व में इनकी विधि कहे आए हैं, उस विधि के अनुसार सब स्थिति विशेषों में संभव नहीं है, क्योंकि उनकी परिमित स्थिति विशेषों में ही प्रवृत्ति होने का नियम देखा जाता है। किसकी बात चल रही है? स्थिति और संस्थिति संक्रम। इसलिए यह पृच्छा वाक्य ही है, व्याख्यान सूत्र नहीं है, ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए। क्योंकि वहां तो पूछा गया था ना, बंद और संक्रम क्या सब स्थिति विशेषों में होता है? ऐसा नहीं कहा कि सब स्थिति विशेषों में होता है, ऐसा क्यों नहीं कहते? उसमें से अर्थ निकालते तो ये तो होता ही नहीं सब में, इसलिए ये तो प्रश्न ही हो सकता है, ये स्टेटमेंट नहीं है। परिमित यानी लिमिटेड। यानी ये जो स्थिति बंद है, स्थिति संक्रम है, वो सभी जो निषेक पड़े उनमें सभी में नहीं होता है, कुछ विशिष्ट में होता है, पर्टिकुलर में होता है। इसलिए ऊपर जो बताया था वो पृच्छा ही है, व्याख्यान नहीं है, ये बात निश्चित होती है। अब इसी अर्थ का समर्थन करने की इच्छा वाले आचार्य आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। वह जैसे तम जहां लिखा ना, वह जैसे, यह सूत्र शुभम है। अब उसके लिए और एक गाथा बताएंगे ना, हमने गाथा नहीं है, सूत्र ही है। पहले जो भाष्य गाथा देखी थी उसी का ये सूत्र है, पढ़ेंगे इसको। बंधो व संकमो व नियमा सव्वेषु ठिदि विशेषेतु एदम नौवदि निदिठम ति एदम पुनः पुच्छिदे किम सव्वेषु ठिदि विशेषेषु आहो न सव्वेषु। कहते बंध और संक्रम नियम से स्थिति विशेषों में होता है, इस वचन से यह जाना जाता है, इस द्वारा यह निर्देश किया गया है कि यह व्याख्यान सूत्र है क्या? परंतु यह व्याख्यान सूत्र न होकर पृच्छा सूत्र है। इस द्वारा यह पूछा गया है कि बंदर संक्रम सब स्थिति विशेषों में होता है या सब स्थिति विशेषों में नहीं होता, यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह। प्रश्न कोई कितना अलग लगा रहे हैं, प्रश्न ही नहीं समझ में आवे तो उत्तर क्या समझेंगे कहते हैं। कोई इसको ऐसा नहीं समझेंगे ये क्या लगाना है चाहिए आगे, क्योंकि गाथा में तो ऐसा कुछ क्या वगैरह नहीं लगाया, तो वहां तो कहते हैं सभी स्थिति विशेषों में होता है, तो क्या होता है क्या नहीं होता, ये प्रश्न पूछना चाहते थे। क्योंकि अगर हम उसको स्टेटमेंट कहेंगे तो गलत अर्थ निकलेगा उसमें से। यह सूत्र गतार्थ है क्योंकि अर्थ को ही इसके द्वारा दृढ़ किया गया है। इस प्रकार उक्त गाथा सूत्र के इस पूर्वार्ध के पृच्छा सूत्र रूप अर्थ को जानकर और पृच्छा क्रम को दिखलाकर अब इस पृच्छा के द्वारा गाथा सूत्र से सूचित होने वाली गाथा सूत्र से सूचित होने वाले निर्णय संबंधी कथन को करते हुए विभाषा सूत्रकार, ये सत्रकार हुआ सूत्रकार, आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। यानी अभी ये जो प्रश्न पूछा है अभी विभाषा करेंगे, उस पर और समझाएंगे। यहाँ कहते हैं तत्तो वत्तव्य मण सव्वेषुक्ति। उक्त प्रश्न के उत्तर में कहना चाहिए कि सब स्थितियों में बंध और संक्रम नहीं होता, इसलिए यह कहना चाहिए कि सब स्थिति विशेषों में बंध और संक्रम नहीं होता है। शंका, ऐसा क्यों होता है? समाधान कहते हैं, अभी फिर ऊपर सूत्र पढ़ेंगे। किट्टी वेदगे पगदंती चत्तारी मासा एत्तिगाओ ठिदियो बज्जंती आवलिय पवित्ताओ मोक्तुन शेषाओ संकमिज्जंती। ये पूछा गया था कि सभी स्थिति विशेषों में बंध होता है कि नहीं होता, तो यहाँ कहते कि सभी स्थिति विशेषों में बंध नहीं होता, क्योंकि स्थिति तो बहुत सारी पड़ी है, सत्ता में पड़ी है ना स्थिति विशेष, तो सत्ता में जितनी पड़ी है स्थिति, नीचे प्रथम स्थिति भी चल रही है जिसका वेदन चल रहा है, तो कहते बंध किस रूप से होगा, ये सभी रूप से बंध होगा कि नहीं होगा, तो कहते नहीं होगा। क्यों नहीं होता? तो कहते कि वो बताएंगे कितना छोड़कर कितना है, क्योंकि जितना ये तो सत्ता की स्थिति है, सत्व स्थिति है, और यहाँ बंद कितना होता है, जितना कुछ यथायोग्य बंद होगा। अच्छा चार मास कहते हैं, ये चार मास प्रमाण जितनी है स्थिति है उसमें बंद होगा, आबादा में भी बंद नहीं, ऊपर भी नहीं है, क्योंकि जितना सत्व में पड़ा है उतना तो बंद होता नहीं कभी। अब यहाँ इसका उत्तर देंगे, ये कहते हैं किट्टी वेदगे पगदंती चत्तारी मासा यत्ती गाँव ठिदियो बज्जंती आवलीय पविठाओ मुक्तुन शेषाओ संतामिचंती। यहाँ कृष्टि वेदक का प्रकरण है, कृष्टियों का उदय शुरू हो गया यहाँ पर, इसलिए इसके चार मास इतनी ही स्थितियां बनती है, तथा आवली ने उदयावली प्रविष्ट स्थितियों को छोड़कर शेष सब स्थितियां संक्रमित की जाती है। मैंने आगे वाली कृष्टि में कौन कौन सी कृष्टियां संक्रमित होती है, बंद तो देखा लिमिटेड होता है, संक्रमण उदयावली में संक्रमण नहीं होता, जो उदयावली में प्रविष्ट है वो अपने रूप से रहती है, बाकी संक्रमित होगी, उदयावली को छोड़कर ऊपर की स्थितियां हैं उसकी संक्रमण होगा उसमें। इस विभाषा सूत्र का यह भावार्थ है,
उदयावली का प्रथम स्थिति है, तो प्रथम स्थिति में जो स्थिति बनती है उसका भी संक्रमण उदयावली को छोड़कर होता है,
प्रथम स्थिति में स्थिति बंद होता ही नहीं है,
स्थिति बंद नहीं, प्रथम स्थिति की स्थिति बनी है उसमें उदयावली को छोड़कर बाकी की
हाँ, होगा ना, उदीर्ण वगैरह होती है, संक्रमण होता है,
उदीर्ण
संक्रमण किसको कहते हैं, अपकर्षण को भी संक्रमण कहते हैं, पररूप होने को भी संक्रमण कहते हैं, उत्कर्षण को भी संक्रमण कहते हैं। संक्रमण का अर्थ हमने तीन टाइप का देखा था, ख्याल है ना, याद है कि नहीं, भूल गए, हाँ देखो अभी इसका भावार्थ कहेंगे 59 पेज पर। प्रथम समय में कृष्टि वेदक जीव के चारों संगलनों का स्थिति सत्कर्म 8 वर्ष प्रमाण होता है, ये सत्ता की स्थिति की बात है, कृष्टि वेदक का पहला समय है, यहां से शुरू हुआ, क्योंकि क्रोध संज्वलन के उदय के समय क्षपक यह सत्व स्पष्ट रूप ही पाए, उदय के समय क्षपक कोहोदय खवगम्य क्षपक में चाहिए, परिफुडमेव तदुवलंबादो, क्योंकि क्रोध संज्वलन के उदय के समय क्षपक में यह सत्व स्पष्ट रूप से ही पाया जाता है, क्षपक में करना क्योंकि ऊपर खवगम्मी का है, सप्तमी लगाई ना, किंतु उस काल में एयत प्रमाण स्थितिबंध नहीं पाया जाता, स्थितिबंध हमेशा कम होता है, 8 वर्ष की तो स्थिति सत्ता में पड़ी है, इतना बंद तो नहीं होता, मात्र उस काल में संज्वलन कषायों का स्थिति बंद 4 मास प्रमाण ही पाया जाता है, 8 वर्ष की स्थिति पड़ी है और बंद 4 मास प्रमाण हो रहा है, किंतु उस काल में होने वाला स्थिति संक्रम उदयावली प्रविष्ट स्थितियों को छोड़कर शेष समस्त स्थिति विशेषों में प्रवृत्त होता है, स्थिति संक्रम की बात, क्योंकि उस काल में संक्रम संबंधी और दूसरा प्रकार संभव नहीं है, उस काल में इस कारण से न सवे सुचिति विशेष भी ऐसा कहा गया है। संभव नहीं है इस कारण से, बीच में डालना है दूसरा, देखो उस काल में संक्रम संबंधी और दूसरा प्रकार संभव नहीं, यही ना, इस कारण से न सवेशु ठिदि विशेषेषु ऐसा कहा गया, नहीं नहीं उस काल में आगे दूसरा वाक्य, यहाँ वाक्य पूर्ण है, एक पूरा सेंटेंस बीच में डालना है। उस काल में आगे लिखना है, उस काल में स्थिति उदीर्णा भी उदयावली को छोड़कर शेष समस्त स्थितियों में प्रवृत्त होती है। स्थिति उदीर्णा किसको कहना है, जिन निषेकों में से उदीर्णा होकर नीचे आता है। अब उदयावली में से उदयावली में नहीं आएगा, तो स्थिति उदीर्णा भी सर्वत्र से होती है। इस प्रकार यह अर्थ भी इसी सूत्र द्वारा सूचित हुआ जानना चाहिए। ये कल फिर हम दोबारा ले लेंगे, पैराग्राफ दो लाइन पढ़ लेती हूँ। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा गाथा के पूर्वार्ध की विभाषा करके, अब गाथा के उत्तरार्ध का आश्रय करके अनुभाग संग्रम और अनुभाग उदीर्णा की प्रवृत्ति विशेष का उदाहरण करने के लिए सूत्र कहते। ये शुरू से ले लेंगे हम विभाषा सूत्र का भाषा। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो।